नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उड़ीसा के पुरी में आज शाम रथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा में सम्मिलित होंगी। कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ दो अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादी ढेर, दोनों जगह मुठभेड़ जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमान ने कहा कि श्री मोदी की यात्रा की बेसब्री से प्रतीक्षा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक में आज तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और मलेशिया में एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में आज भारत के अभय सिंह 2 स्पर्धाओं के लिए फाइनल में खेलेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज पुरी में आयोजित की जा रही है। इसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों को 3 रथों में ले जाया जाएगा। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पुरी पहुंच चुकी हैं। रथों को श्री गुंडिचा मंदिर ले जाने के लिए तैयार है। ये रथ 1 सप्ताह तक गुंडिचा मंदिर में रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने रथ यात्रा के लिए ओडिशा में 2 दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।
उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की दिव्य यात्रा आज दोपहर धाड़ी पहंडी नामक एक विस्तृत शाही अनुष्ठान के साथ शुरू हुई। भगवान जगन्नाथ को नंदीघोष रथ पर ले जाया गया, जबकि देवी सुभद्रा और श्री चक्रराज सुदर्शन को देवदलन रथ और भगवान बलभद्र को तालोध्वज रथ पर ले जाया गया। इस साल विशेष खगोलीय व्यवस्था के कारण रथ को 2 दिन तक खींचा जाएगा, जो कि 1971 में आखिरी बार दिखा गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्सव में आने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जबकि उड़ीसा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के लिए VIP क्षेत्र की योजना बनाई गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
उधर गुजरात में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। विग्रहों के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भगवान जगन्नाथ के देश और विदेश के अनगिनत श्रद्धालु रथ पर सवार भगवान के 3 रूपों को देखने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने भगवान जगन्नाथ से सभी की प्रसन्नता, शांति और संपन्नता की कामना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान जगन्नाथ के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कामना की कि उनकी कृपा देश पर सदैव बनी रहे। कश्मीर घाटी के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ 2 अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। ये मुठभेड़ फ्रिसल चिनी गांव और मोटेर गांव इलाकों में कल शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों को इन क्षेत्रों में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली। पुलिस महानिदेशक RR स्वैन ने इन आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की है।
कन्फर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। निसंदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं।
मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इस बीच दोनों इलाकों में आज दूसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है। सूरत के औद्योगिक क्षेत्र में कल 6 मंजिला इमारत के गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने पूरी रात बचाव अभियान चलाकर 7 लोगों के शव बाहर निकाले। इनमें 6 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। अग्निशमन दल ने 1 महिला को सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेज दिया।
12 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक औरत को बचा लिया गया है और 7 डेड बॉडीज हमें मिली है अभी तक कंफर्म किए थे और उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है।
पुलिस ने कहा है कि आवासीय इमारत के 30 अपार्टमेंट में से 5 फ्लैट्स में लोग रह रहे थे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने तमिलनाडु प्रदेश पार्टी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। चेन्नई में आज आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने पर बल देगी। तमिलनाडु में हाल में हुई हत्याओं का उल्लेख करते हुए सुश्री मायावती ने राज्य सरकार से आरक्षित समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की।
यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है कि उनको लॉ लोड तरफ ध्यान देना चाहिए और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं, इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी रूस की राजधानी मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी की ये यात्रा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर हो रही है। सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। रूस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मंगलवार को ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे। पिछले 41 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी मॉस्को के साथ साथ वियना में भी भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगे।
भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन में सभी द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। इसमें रक्षा, व्यापार संबंध, निवेश संबंध, ऊर्जा सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल हैं। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी दृष्टिकोण को साझा करेंगे। वे ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, G20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों में द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति का भी आकलन करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन से मुलाकात करेंगे और वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री और चांसलर दोनों देशों के व्यापार प्रमुखों को भी संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर अगले सप्ताह वियना में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए काफी उत्सुक हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नेमा ने कहा कि श्री मोदी की यात्रा एक विशेष सम्मान है क्योंकि ये 40 से अधिक वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नेमा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक अवसर को महत्वपूर्ण बनाने के लिए ऑस्ट्रिया का दौरा बड़े सम्मान की बात है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रारंभिक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के जवाब में दिल्ली की जनता ने लोकसभा की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है कि वे भ्रष्टाचार के साथ नहीं बल्कि सच्चाई के साथ हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में कड़ी मेहनत करने और भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी की सरकार को हराने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय में नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर कल सुनवाई होगी। इनमें नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष 26 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। विद्यार्थियों ने अपनी याचिकाओं में नीट में कथित अनियमितताओं की एक अलग और स्वतंत्र जांच की मांग की है। बढ़ते नीट विवाद के बीच केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के किसी भी सबूत के अभाव में नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र ने यह भी तर्क दिया है कि नई परीक्षा से लाखों वास्तविक उम्मीदवारों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए 19 जून से शुरू हुआ बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इन बैठकों की अध्यक्षता की। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वित्त मंत्री ने बहुमूल्य सुझाव साझा करने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को आश्वासन देते हुए कहा कि बजट तैयार करते समय इन सभी सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा और उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में बहुत तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिन तक गरज चमक के साथ तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय में कल तक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा बिहार में बुधवार तक, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बृहस्पतिवार तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में आज थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने असम के निचले जिलों के कुछ हिस्सों और बरांग घाटी में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। राज्य में लगभग 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन बल तथा अन्य एजेंसियां राहत और बचाव कार्य कर रही हैं।
जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे लगभग 300 अस्थायी राहत शिविरों में 53,000 विस्थापित लोग रह रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों में खाने पीने के सामान और राहत सामग्री वितरित किए जा रहे हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग द्वारा शुद्ध पेयजल, हेलोजन टेबलेट उपलब्ध कराने के साथ साथ राहत शिविरों पर शौचालय भी स्थापित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए दवाओं के साथ मेडिकल दल भी नियुक्त किए हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा तेज वर्षा के अलर्ट के कारण आज स्थगित है। गढ़वाल के संभागीय आयुक्त विनय शंकर पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी किया। उन्होंने वर्षा और भूस्खलन के कारण यात्रियों को ऋषिकेश से आगे यात्रा न करने और मौसम साफ होने पर ही आगे बढ़ने की सलाह दी है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
मलेशिया की जोहोर में एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में भारत के अभय सिंह आज दो प्रतिस्पर्धाओं के फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स के फाइनल में अभय और वेलवन सेंथिल कुमार की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त मलेशिया की साई हुंग और सियाफिक कमाल की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स के फाइनल में अभय और ज्योत्सना चिनप्पा की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी हांगकांग की तोंग जिंग और तांग मिंग हांग की जोड़ी से खेलेगी। इस बीच भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल 4 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। इधर महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 7 बजे से चेन्नई में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 12 रन से हरा दिया था। उधर कोलंबिया कोपा अमरीका फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया ने पनामा को 5-0 से पराजित किया। सेमीफाइनल में कोलंबिया का सामना उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट में उरुग्वे से होगा। इससे पहले आज सवेरे एक अन्य मुकाबले में उरुग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में ब्राजील को 4-2 से हरा दिया। कोपा अमरीका टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से सुना जा सकेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उड़ीसा के पुरी में आज शाम रथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा में सम्मिलित होंगी। कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ दो अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादी ढेर। दोनों जगह मुठभेड़ जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमा ने कहा कि श्री मोदी की यात्रा की बेसब्री से प्रतीक्षा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक में आज तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और मलेशिया में एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में आज भारत के अभय सिंह दो स्पर्धाओं का फाइनल खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।